अल्लाह ताला ने मुझे आपको कुरान में क्या कहा, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिलमारूफ़ी व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन कौम हो जो लोगों की खैर के लिए निकाली गई। मेरा आपका ताल्लुक जिस ख़ानदान से है, और वो ख़ानदान कौन सा है, नबियों का ख़ानदान है, और उस ख़ानदान की सबसे आखिरी कड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे पारे की पहली दूसरी आयत में देख लीजिए, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकून शुहदा अलन्नास, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वसत, वसत कहते हैं वास्ते को, आप कहते हैं ना मेरा उससे वास्ता पड़ा, उसने मुझे जोड़ दी, वसत कहते हैं दरमियान को, मोतदिल को कहते हैं, यानी हम सब एक कनेक्टर है लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले। जब अल्लाह के साथ लोग जुड़ते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में सुकून भी आता है और ख़ुशी भी आती है और इत्मीनान भी आता है। ये चीज़ अगर आप और मैं समझते हैं ना, तो इंशाल्लाह ये किताब हमें बहुत फ़ायदा देगी। आप देख रहे हैं कि किताब के अंदर अगर बाहर टाइटल दिखाइएगा, तो असल में ये किताब जो है नेकी नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। मसूलियतुन निसा फिल अम्री बिल मारूफी व नहीं नहा अनिल मुनकर, के औरतों की ज़िम्मेदारी, ये अरबी में भी बुक मौजूद है, ये उसी का उर्दू तर्जमा है। अगर आप इस किताब को खोलें, अब मैं थोड़ी सी आपको इस किताब की सैर करवाना चाहती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पर पेज पलटते वक्त आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही पलटें कि दूसरे को भी आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब ना करे, और ये किस्म का खुलासा हो जाएगा कि हम इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे। इंडेक्स खोल लीजिए, किताब के पेज के साथ साथ चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप जो मैं बोलूँगी वो आप देख भी सकेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है वो कम अज़ कम ये नोट कर लेंगे कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। शुरू में आप देखिए, पहली फसल है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मुतल्लिक, ख़वातीन की ज़िम्मेदारी और उसकी अहमियत। पहला टॉपिक जो हम इस किताब में कवर करेंगे इंशाल्लाह वो क्या होगा कि नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की औरतों पे जो ज़िम्मेदारी डाली गई है, क्या वो है भी और इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस नहीं पता होती, उसकी अहमियत नहीं पता चलती, तब तक हम वो काम करते भी नहीं हैं, ठीक है। फिर इसी में आप देखिएगा फ़र्ज़ियत एहतसाब के मुतल्लिक आम नसूस, थोड़े से लफ्ज़ मुश्किल है, आपका तरीका क्या होना चाहिए कि बारीक पेंसिल साथ रख लें। मैं कोशिश करती हूँ जब बुक्स पढ़ाऊँ और उसमें जो मुश्किल लफ्ज़ आते हैं तो मैं उसको उर्दू में बोलने में ही मैं आसान बोलती हूँ, यानी मेरी आदत क्या है कि किसी भी किताब को पढ़ाने के दौरान कोई मुश्किल लफ्ज़ जब आता है तो मैं, अब जैसे ये लफ्ज़ है ना कि फ़र्ज़ियत एहतसाब के मुतल्लिक आम नसूस, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी कि दूसरों को इस काम पे मायल, यानी किसी में कोई बुराई देखें तो उसको उस पर रोकने के बारे में दलाइल क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम इंशाल्लाह दलाइल देखेंगे, कुरान पाक के कुछ दलाइल हैं, फिर अहादीस के दलाइल हैं, फिर इसके बाद दूसरा जो इसका सब पॉइंट है वो क्या है कि ख़वातीन भी दूसरों को बुराई करता देखें या नेकी से रुकता हुआ देखें तो क्या अल्लाह ताला ने वाकई औरतों का भी अपॉइंट किया है। मैं इसको फिर बोलती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरतें दीन का काम क्यों करें, कहाँ लिखा है जी, तुम रोटी पकाओ, तुम बच्चे पालो। एक सिस्टर थी तो वो आई तो कहने लगी कि क्लास ज्वाइन बड़े शौक से की थी, दो चार दिन शौक से आते रहे, बाद में घर में जी अब मियाँ को खाना नहीं उस वक्त मिला। मिसाल इस वक्त ही आप में से किसी के मियाँ खाना गर्म रोटी खाते थे तो आज नहीं मिल रही होगी, या पका के आएंगी या कोई और बनाएगा, तो 19-20 का चेंज तो आएगा। दुख की बात है कि आज हम मुसलमान अपनी रोटी के पानी में 19-20 का चेंज नहीं कर पाते, हमने बाकी काम क्या करने, हमने कहाँ वो तबूक की जंगें लड़नी है और हमने कहाँ वो खजूरें खानी है, हम तो सिर्फ अपना फूड का थोड़ा सा, ये भी नहीं कि खाना हम नहीं पकाते, पका हुआ है तो वक्त से पहले पका देंगे या जाके पका देंगे या कुछ भी कर देंगे, हम में से कोई भूखा तो नहीं किसी को रखता। लेकिन आज हम दीन के नाम पे इतने बेहिस हो गए, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, कि हम ये भी नहीं सोचते उस वक़्त कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट हम इस किताब में पढ़ेंगे, दलाइल पढ़ेंगे, हमारी ये बुक चलती रहेगी इंशाल्लाह, आपको एंड पे ये सिस्टर बता देंगी जिस तरीके से भी इसको मैनेज करेंगे। लेकिन ये है कि ख़वातीन के नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की अहमियत में जो सबसे पहली चीज़ है कि माओ का औलाद के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है। मतलब लोग कहते हैं बच्चों वालों को दरसों में ना आने दें, मैं कहती हूँ फिर पढ़ाना किसको है, यानी ये मेरे अपने दिल की बात है कि असल जो मेरे ऑडियंस होते हैं पढ़ाते हुए वो बच्चों वाली माएँ होती हैं। क्यों? नस्लें तो इनके हाथों में दी हुई हैं, बच्चे तो इन्होंने पालने, उम्मत के बच्चे तो इनके पास है, तो औरत को क्यों इस मौजू को सुनना चाहिए, क्योंकि कल उसने अपने बच्चे को पालना और बाप की निस्बत माँ का बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है, फिर बच्चों का साथ माँ का ताल्लुक बड़ा शदीद होता है, फिर इसी तरह ये कि अगर माँ की ब्रेन सेटिंग नहीं हुई तो बच्चे की कहाँ होगी। फिर इसी में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि बीवियों ने कैसे अपने शोहरों को चेंज किया। यानी ये बुक असल में है दावा की बुक, इसका टॉपिक दावा है, तबलीग या दीन के काम के करने कराने की बातें, लेकिन रियलिटी में देखें तो ये घर के अंदर रहकर बीवी का एक माँ के नाते, एक बीवी के नाते क्या किरदार होना चाहिए। और इसमें इंशाल्लाह आप सबको भी जो एज अ स्टूडेंट क्लास में आते हैं बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा कि अगर कोई किसी से कहता है कि जी आप ये काम क्यों कर रही हैं, आप क्यों पढ़ने चाहती हैं, आपको इससे क्या मिलेगा, क्या आपको इससे ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एक बीवी कैसे अपने शोहर को भी फ़ायदा देती है। और फिर हिस्ट्री की बहुत सारी वाकयात हैं हम इसमें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो इसमें बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो फिर एंड तक चलेगा वो क्या होगा कि वाकयात बहुत सारे हैं, ऑथेंटिक तारीख के वाकयात हैं, सीरत के वाकयात हैं, सहाबियात के, कि औरतों ने किस तरह से अपने शोहरों को या दूसरों को बुराई से रोका और उसके क्या असरात हुए। और उसमें फिर उसके तीन हिस्से हैं कि औरतें करीबी रिश्तेदारों को कैसे रोकेंगी बुराई से या आम सोसाइटी में निकल, यानी इसके दावा के कई मदारिज होते हैं ना, घरों में करें, कहाँ जाएं। बाज़ लोग कहते हैं ये कौन सा दीन है कि अब औरतें निकल पड़ी दर्स पढ़ने देने देने, घर बैठो घर में सुन लो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं कोशिश भी करूँगी कि ये सब कुछ हो। और इसमें तकरीबन 30-35 डिफरेंट स्टोरीज हम पढ़ेंगे एंड तक कि क्या क्या थे, और इसमें हर स्टोरी में आपके मेरे लिए कोई गाइडलाइन ज़रूर होगी। याद रखिए गैर महसूस तरीके से हमारे लिए ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए आएगी। तो हम ये दुआ करेंगे कि हम इस मौजू का हक अदा कर सकें, इसके साथ इंसाफ कर सकें और बेहतरीन तरीके को इससे ले सकें। तो ये बताइए कि ये सब कुछ सुनने के बाद एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आसान मौजू है बट अहम बहुत है, हमें बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल बातें नहीं सीखनी। हम इस वक्त में ग्रामर भी सीख सकते थे, हम इसके अंदर कोई फिक की बात भी पढ़ सकते हैं, बट वो बातें तो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलेंगी। इस किताब को पढ़ने पढ़ाने में एक और चीज़ इंशाल्लाह हम इस दर्द को भी पैदा करने की कोशिश करेंगे और अपनी इस सोसाइटी से रिक्वेस्ट भी करेंगे, इनडायरेक्टली हम अपनी इस सोसाइटी को इस मौजू के पढ़ने के दौरान ये एहसास भी दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये काम अगर आज इस वक्त मैं और आप कर रहे हैं ना, आप सिर्फ सिंपल सी दो जुमलों में लिख लें जो काम इस वक्त मैं और आप कर रहे हैं इसकी अहमियत क्या, तो मुझे लगता है कि फिर औरों को बताने और बुलाने में आपको मुझे मदद भी तो होगी ना। बाज़ बार लोग कुछ कह दें तो हम चुप हो जाते हैं, हाँ ये तो है, मासी नहीं आई जी, मासी नहीं आई तो क्या हुआ, छुट्टी हो गई। देखिए मैनेज करना सीख गए ना तो ज़िंदगी में कोई काम बुरा नहीं होगा। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देती हूँ, आप घर में हैं, घर मेहमानों से भरा हुआ है, आप वॉशरूम में जाती हैं कि नहीं? वजह सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि वॉशरूम में जाना आपकी नीड है कि नहीं। आप रात को सोती हैं कि नहीं? क्यों कि एक्सेप्टेड है कि आपको रात को सोना है। आप खाने के वक्त पे खाना खाती हैं कि नहीं खाती? कुछ चीज़ें नॉर्म है, वो मानी गई हैं कि ये होनी अंडरस्टूड है, तो फिर आपकी क्लास की छुट्टी क्यों होती है? जब भी हमारा तो दिन रात का ही काम है ना, लोग क्लासेस में आते हैं जाते हैं, तो मैं अक्सर सिस्टर्स की छुट्टी का जब भी कोई बात आए तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके लिए शायद इतना अप टू डेट नहीं होगा। मैंने कहती सिस्टर अगर आप जॉब कर रही होती तो आज के ही हालात जिसमें आप छुट्टी करना चाह रही थी या कल आप जिस दिन में नहीं आए, क्या आप फिर जॉब से भी छुट्टी करती? वहाँ तो छुट्टी नहीं होती, मेहमान घर में बैठे हैं, वो खुद चाय पिए बनाए, सुबह बेगम 7 बजे उठ के चली जाएंगी क्योंकि वो जॉब है। बात है क्योंकि वो एक्सेप्टेड है, हमने खुद को अपने अमल और अपने यकीन से दूसरों को ये यकीन दिलाना है कि ये काम हमारे लिए कितना अहम है। मैं कहती हूँ सिर्फ ये जुरत मिल जाए ना तो हॉल्स छोटे पड़ जाएँ, जितनी ख़वातीन है और जितनी ज़रूरत है। और मैं जब बाहर की दुनिया में झांकूँ तो मुझे रोना आता है, हज़ारों के कपड़े पहनने वालियाँ, लाखों के परस और जूते और जेवरात पहनने वाली ख़वातीन को यकीन करें नमाज का तर्जमा तक नहीं आता, कुरान की एक आयत पूछ लेनी आती, रेफरेंस नहीं आता, सीरत नहीं आती। सिर्फ रबीउल अव्वल में आप 10-12 सवाल लोगों से जाके पूछें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके सारे बच्चों के नाम ही पूछ लें, उनकी सारी बीवियों के नाम पूछ लें, यानी जिन चीज़ों से कोई हमें बहुत फ़ायदा भी नहीं بیسک بیسک چیزیں بھی لوگوں کو نہیں بتاتی. آج امت مسلمہ میں جو ڈکلائن ہے، جو پریشانی ہے، یہ جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا ہے، یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہن کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یہ بچے ہی ہیں نا جو ویسٹرنائز ماحول میں جب آتے جاتے ہیں تو ان کا کیا حالات ہوتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اس لیے چینج ہو گیا ہے، ہم نے اس دین کی کام کو پیچھے ڈال دیا. ہماری بچی 4 سال تک یونیورسٹی میں جا سکتی ہے، مانا ہوا ہے. میں تھوڑی سی اس بات کو مل کے ایک اور طرف ذہن آ گیا تو وہ بھی سمجھ لیجئے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہم سب کے گھروں میں جو بھی بچے بچیاں ہیں ان کا اسکول میں جانا ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں؟ 3 سال کا بچہ آپ تو کہتے ہیں 2.5 سال کا ہی دے آؤ ان کو، ذرا ہم بازار میں زیادہ آسانی سے پھر لیں گے، بچے کو بھیجو ان کے پاس. ایکسیپٹیڈ ہے کہ نہیں 4 سال کا بچہ اسکول میں بھیجنا؟ کوئی رکھتا گھر میں؟ یہاں تو مرضی ہے، باہر کے ملکوں میں آپ رکھ نہیں سکتے، یعنی اللیگل ہے. ہر ملک کی ایج فرق ہے، کسی ملک میں 4-5 سال ہے، 6-7 سال. اگر آپ بچے کو نہ تو گھر میں ہوم اسکولنگ، جو رجسٹرڈ ہوم اسکولنگ ہے جو گورنمنٹ سے، اس میں نہ رکھیں، یا آپ بچے کو اسکول میں نہ بھیجیں، آپ کو پولیس لے جائے گی آ کے. ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس ملک کے بچے جو ہیں وہ ان ایجوکیٹیڈ ہو. یہ ایکسیپٹیڈ ہے. تو کیا دین کی تعلیم اور دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہماری سوسائٹی میں اتنا ہی لازم سمجھا جاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اپنے اوپر لیں، میں اگر اپنی زندگی کو دیکھ لوں تو آپ ایک جو نارمل چیز دیکھیے کہ ماسٹرز کرنے تک کم از کم 20 سال آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے. 20 سال تو کہیں نہیں گئے، کوئی نہیں بولتا 20 سال. ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے اکثر بچیوں کو ادھر ادھر جو ڈفرینٹ ملکوں میں حساب لگایا ہے، 25 سال ہو لگ ہی جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں ایک لڑکی یا لڑکا، اور یہ دونوں کے لیے، لیکن ہم اس وقت مور لائک لڑکیوں کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا موضوع خواتین ہے. کل رات بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ایک نارمل ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر بننے میں ایک بچے کی عمر 32 سے 35 سال ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اسپیشلائز کر کے وہ اپنی پریکٹس شروع کرتا ہے تو میں نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ 40 سال کی تو پھر اس بچے کی عمر ہو جائے گی نا جس دن اس کی پہلی کمائی آپ کھائیں گے. از اٹ نیچرل؟ جس میں 2 کروڑ روپے کا خرچہ بھی لگا لیں، باہر کے ملکوں میں یونیورسٹیوں میں ٹکٹس پڑھنا وڑھنا، 2 کروڑ روپے انویسٹ کر کے پہلے 5 سال عمر کے نکال دیں، 32 میں سے 35 میں سے 5 نکال دیں، 30 اور 5 اوپر لگا لیں اسپیشلی، 35 سال آپ اپنی زندگی کے دیتے ہیں، 2 کروڑ روپیہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایفرٹس ڈالتے ہیں، پھر ایک روزی روٹی کمانے کے قابل ہوتا ہے. اچھی بات ہے، کرنا ہے، مردوں کا تو یہ کام ہے، سب کو کرنا ہے. میرا اس وقت وہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کریں نہ کریں، بٹ کیا یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس قرآن کو پڑھنا جس نے ہماری زندگی میں تبدیلی لانی ہے، خوشی لانی ہے، جس نے سکون دینا ہے. رات جو بات ہو رہی تھی اس میں سے باتیں جو یاد آ رہی ہیں، تو میں نے ان سسٹر سے کہا، میں نے کہا سسٹر آپ کو بتایا کہ اصل دین داری کیا ہوتی ہے اور دین پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ کہتی کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا خوشی ملتی ہے. میں نے کہا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں میرے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے. تو کہتی ہیں غصے میں، ہے کوئی آج دنیا میں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا ادھر دیکھیں، ایک ہے. میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا آج میں آپ کی زندگی میں پہلی عورت ملی ہوں آپ کو، میں آپ کے سامنے اقرار کر سکتی ہوں کہ آئی فیل آئی ایم دا موسٹ بلیسڈ پرسن ان دا ورلڈ. کیوں؟ مسئلے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں آیا آج تک زندگی میں، کوئی دکھ نہیں آیا، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں. کہتی آپ یہ کہہ سکتی ہیں، میں تو نہیں مانتی کہ دنیا میں کسی کو کوئی مسئلے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ اس کتاب سے تعلق آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون اتنا بھر دیتا ہے کہ جنگ بھی لگ جائے گی نا آپ آرام سے بیٹھ کے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کہ جو ہونا پھر ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اس چیز میں سکون اور خوشی ملتی ہے. کیا ہم اپنے ارد گرد، ہم اگر صرف اپنی بچیوں کو لے لیں اور پھر اس میں بڑے بچیاں بڑی ہوئیں تو ہم بن گئی نا خواتین. کیا آج تک آپ میں سے ہر ایک اپنی ایج دیکھے، 25, 30, 35, 40, 50, 60 جو جس کی عمر ہے، اس عمر تک پہنچتے ہوئے کیا آپ نے یہ سوچا کہ 15 سال سے 20 سال لگا کر آپ نے دنیا کی تعلیم لی، اور اس میں سے ہمارے اس کلچر میں تو 70% لوگ استعمال ہی نہیں کرتے اس تعلیم کو. شادی کے بعد چولہا چونکے میں پڑ جاتے ہیں، ہانڈی چولہا، وہ سب، وہ ڈگریاں جو ہیں وہ چولہے میں جل جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کر رہے ہیں. کبھی کوئی باپ سوچتا ہے یا کوئی ماں سوچتی ہے کہ یہ جو دن رات کی جہاں میں نے ایک غلامی اپنے سر پہ لی ہوئی ہے، اس کے اینڈ پہ میں نے اپنے اس بچی اور بچے سے لینا کیا ہے؟ صرف ایک نام ہے، یاد رکھیں، صرف ایک نام ہے، कि ये बच्ची इतना बड़ी हुई। मैं फिर बच्चियों पर बात करूंगी, लड़कों को जेन से सुखा, इस पूरे कोर्स में मर्दों की बातें ही ना करें तो अच्छा है। सिर्फ ये कि हमारी बच्ची ये की थी कि, और ऐसी उल्टी सीधी डिग्रियों के भी नाम लेंगे जो पता ही नहीं, कहेंगे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी जो हमें नहीं पता ना डिग्री। और मैंने कल ही परसों एक जुमला कहीं किसी का पढ़ा, बहुत खूबसूरत था, गालिबन इशफाक अहमद के नाम पे था वो किसी का, कि डिग्रियां तो असल में उस सारी पे स्लिप्स जो पढ़ने के दौरान दी होती है ना, उसकी रसीद होती हैं। असल में तो किरदार होता है जो बंदे के अंदर से निकलता है। ये तो रसीदें मिलती हैं, ये फिर रही हैं। और कल ही मुझे एक पिक्चर किसी ने भेजी वीडियो में, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी से, और पता नहीं दो तीन मुल्कों के, यूके के नाम लिखे हुए थे, कि एक लड़का वहाँ की डिग्रियाँ लेके पढ़ के आया, और इधर उसने जगह जगह जॉब के लिए ट्राई किए और जॉब नहीं मिली, तो बिल आखिर उसने आलू चने की
रेड़ी
रेड़ी लगाई है, उस रेड़ी पे उसने नीचे अपनी डिग्री की तस्वीर,
लगाई
और उसने कहा कि जिस मुल्क में इतना पढ़ के आए हुए बंदे को बगैर रिश्वत दिए या सिफारिश के जॉब नहीं मिलती, तो मैं फिर वहाँ रेड़ी लगा के दिखाता हूँ कि मैं ये काम भी कर सकता। रेड़ी लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप समझिए ये सिर्फ एक परसेप्शन है। आपने क्या किया, आपने कितना पढ़ा, आपकी बच्ची क्या करती है। मैं कहती हूँ उस बच्ची के उस सारे पढ़ने पर हमें खुद भी समझ आ रहा होता है कि नाम ने उसकी कमाई खानी है। नहीं खाते ना अक्सर हमारे मुल्क में, मर्द भी नहीं पसंद करता कि अपनी बीवी की कमाई खाए। मर्द बहुत अच्छे जॉब पे होगा ना, तो बीवी फख्र से कहेगी मेरे हस्बैंड ये करते हैं, बड़े ग्रेड उसके अफसर है। अगर बाज़ुकात बीवी की जॉब अच्छी भी हो ना, तो मर्द नहीं बताते, उनको अना का मसला लगता है कि हम अपनी बीवी की डिग्री की तारीफें क्यों करें कि वो इतने पैसे लेके आती है। इसके बावजूद कम अज़ कम कुछ भी ना करें, BA कर लें, 20 साल तो देते हैं ना हम अपने बच्चों के पढ़ने पढ़ाने पर, बच्चियों के बल्कि। तो इसकी क्या अहमियत है। वो कभी आमीन हुई थी और वो अब होगी एक बार फिर जब हम दुनिया से जाएंगे। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, याद रखिए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी आएंगी, लेकिन वहाँ हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं, क्योंकि जनरली तबलीग और दावा का और अमर बिल मारूफ का इतना हुक्म है इस्लाम में कि अगर लोग ये काम ना करें, जो अब जब लोग नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने से रुक जाते हैं, अल्लाह उन पर गज़ब नाजिल करता है। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे लोगों को फिर अपनी कह लीजिए कि अजाब में लेता, कि फिर नेक लोग भी दुआएं करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल नहीं करता। तो ये चंद बातें थी, मुझे लगता है कि इस मौजू की अहमियत को तुम समझ गया ना। आप में से कोई सवाल कोई बात करना चाहे तो करें, कोई बात आपका हक है, क्योंकि सिर्फ मुझे बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है। जो बातें कही हैं सही कही हैं, क्या हमें इस शोर को बेदार करने की ज़रूरत है। और याद रखिए आपके मेरे इस प्यारे मुल्क के सारे मसलों का हल ये है, करप्शन ख़त्म करनी है, लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से आगाह करना है। हर बंदा चिड़चिड़ा, हर बंदा गुस्से में, हर बंदा दूसरे पे बरसने को तैयार। आप ज़रा सा एक राउंड लगाकर देखें, घर की मालकन मासी पे चीख रही है, मासी मालकन के आगे शाउट कर रही है, जवान बच्चे माँ के आगे बोल रहे हैं, शौहर बाहर से थके आ रहे आके अंदर पहले दो चार बड़के मारते हैं, गुस्सा करके बताते हैं आ गया हूँ मैं घर में चौधरी साहब, और दर्जी के पास जाएं तो दर्जी चिड़चिड़ कर रहे हैं, रिक्शे वाले के पास जाएं तो रिक्शे वाला चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं। और आप किसी जगह, यानी ये मुझे इस ट्रिप में कई, हम कुछ ऑफिशियल चीज़ों में थे, साथ जाने आने का इत्तेफाक हुआ, आप इतनी ऑनरेबल कुर्सी पे बैठे हैं, बाहर आपके इतने बड़े टाइटल लगे हैं, लेकिन कस्टमर डीलिंग में ज़ीरो हैं, चिड़े हुए बैठे हैं। ऐसे लगता है हम कर्ज़ मांगने गए, उधार मांगने गए। भैया आप अपना एक काम लेके आए हैं, आप एक को इज्जत दिए, आप हमें बात करें, आप हमसे लड़ने पे आ गए, ये नहीं थे करना, वो नहीं। हर बंदा लड़ने को तैयार है, ये चिड़चिड़ाहट क्यों है हमारे मुल्क में, ये वजह है। अल्लाह ताला बरकतें छीन लेता है, अल्लाह ताला रहमतें छीन लेता, ये सब ने ठीक उसी दिन होना है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। यकीन करें हम पूरे मुल्क को तो ठीक नहीं कर सकते। किसी की बात बड़ी अच्छी लगी थी कि उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था, सबसे छोटी उम्र थी, तो मैं शऊर में आया तो मैंने कहा कि मैं सारी दुनिया को ठीक करूंगा, कर सकता हूँ। फिर थोड़ा सा चंद साल बड़ा हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैं सारी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता मैं अपने मुल्क को ठीक कर लूँगा। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क को नहीं ठीक कर सकता, चलो मैं अपने शहर के लोगों को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब 50-60 की उम्र पे पहुँच के ये पता चला कि कि मैं सिर्फ खुद को ठीक कर सकता था और मैंने उसका वक्त गंवा दिया। समझ रहे? अगर ये बात वो कहता है मुझे उस दिन पता चलती ना, जिस दिन मैं दुनिया को ठीक करना चाह रहा था, अगर उस दिन मैं ये सोचता कि मैंने खुद को ठीक करना है, तो आज पूरा मुल्क ठीक हो चुका होता। आज हमारा इशू ये है। इतने रिसोर्सेज, इतनी नेमतें हैं अल्लाह की के लफ्ज़ों में बयान ही नहीं की जा सकती। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में भी रुसवा होने से बचाए, हमारे कॉन्सेप्ट ठीक हो। और तरस आते हैं उन लोगों पे जो जिंदगियां बेकार ज़ाया करके जा रहे हैं। हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, तो लास्ट मंथ उनके ब्रदर की सडन डेथ हुई। ऑफकोर्स बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह सबको बचाए। और हुई भी कब डेथ? बेटी की शादी की है, रात को उसको रुख्सत की है, अगले दिन सुबह उठ के उसका वलीमा की, शाम की तैयारियां होंगी, तो सुबह खड़े खड़े उसको हार्ट अटैक हुआ और बाप मर गया। बहन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ऑफकोर्स हम सब इस दुख में आपके बराबर के शरीक हैं और हम इसको महसूस करते हैं, लेकिन सिस्टर मैं आपसे एक सवाल करूं, भाई फौत हो गया तो आप उनका इतना सदमा ले रही हैं, कभी भाई की नमाज फौत हुई हो तो आपने इतना सदमा लिया? अगर भाई का कर रोज़े मिस हुए हो या वो किसी गलत काम में अगर अल्लाह ना करे होते, तो आप इतना सदमा उनका लेती? कहती हमें तो पता ही नहीं होता इन बातों का, कौन क्या कर रहा है। आज हमारा हाल यह कि हमारे ख़ानदान का कोई एक मरता है ना, हम एक टांग पे खड़े होके जा सकें, खड़े होके जा सकें, हम पहुंचते हैं और बस जाके तो आ जाते हैं, बजा कह के फौत हो गया अब इनको मिल लो। लेकिन हम दूसरों की नेकी बदी, अच्छी तरह सोच, करेक्टर बिल्डिंग, उसमें हम साथ नहीं दे पाते। तो दुआ करें कि आज हमें ये शऊर मिल जाए। और ये मेरा काम है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और याद रखें, हर औरत माँ भी है। एक ख़ास उम्र में आके वो माँ बन जाती है। शादी ना भी होगी ना, तो औरत जब बड़ी होती है, आप देखें अपने बच्चे ना भी हों तो आप दूसरे के बच्चे को बेटा कहेंगे, फितरी सी बात है। लड़की जब औरत में ढलती है ना, तो वो माँ बन जाती है। अगर माँ बन के नेकी के हुक्म और बदी की अहमियत से वो नहीं, आने वाली नस्ल खतरे में। आज हमारे नस्लों का जो बिगाड़ है उसकी वजह ये है।